नमस्कार भारत 18 दिसंबर दिन मंगलवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। शपथ ग्रहण के बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने किया किसानों का कर्ज माफ, भाजपा ने बताया धोखा।
जो किसानों के साथ में उन्होंने कर्जा माफी की घोषणा बतौर निर्णय लिया है वह धोखा है।
कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में क्या विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन पड़ा फीका।
हमने सारे राजनीतिक दलों को न्योता दिया था शपथ ग्रहण समारोह में, ममता बनर्जी नहीं आ पाई, किसी और काम में व्यस्त थी।
मुंबई के एक अस्पताल में आग लगने के कारण 6 की मौत, 100 से अधिक घायल।
4 मंजिला ये इमारत है, जब हमने देखा तो वो पूरी तरह सभी जगह पे फायर टेंडर्स थे, एम्बुलेंसेस की आवाज आ रही।
बताएंगे पाकिस्तानी जेल से लौट रहे भारतीय के बारे में भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण के बाद वहां के मुख्यमंत्रियों ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ ग्रहण के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी घोषणा की। अमरीकी सीनेट के लिए तैयार की गई 2 रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रूस ने 2016 में हुए अमरीकी चुनावों पर असर डालने के लिए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। नए रिसर्च के मुताबिक यूट्यूब, टम्बलर, इंस्टाग्राम, पेपल समेत फेसबुक और ट्विटर तक के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अमरीकी सीनेट की ओर से जारी रिपोर्ट कहती है कि ये सब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए किया गया था। बड़ी टेक कंपनियों की ओर से मिले डेटा से की गई रिसर्च से पता चला है कि रूस समर्थित इस प्रोपेगेंडा से करोड़ों अमरीकियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करें। रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया साइट्स लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई हैं। 2 में से 1 रिपोर्ट के लेखक ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर फिलिप हॉवर्ड ने कहा,
I think the surprises are that the misinformation started earlier than we expected.
मुझे लगता है चौंकाने वाली बात ये है कि ये भ्रामक जानकारी बहुत पहले से फैलाई जा रही थी और 2016 में हमें पता चलने के बाद तक ये जारी रही। इस प्रोपेगेंडा को मल्टी प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाया गया। 2016 की शुरुआत में इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये थे रिपोर्ट लिखने वाले प्रोफेसर फिलिप हॉवर्ड के शब्द। 3 साल पहले गिरफ्तार किए गए चीन के एक वकील की पत्नी ने बीजिंग कोर्ट के सामने सर मंडवाकर विरोध जताया। ली वेंजू के पति वांग क्वानजांग समेत 200 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 2015 में चीन सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से वांग क्वानजांग को कभी नहीं देखा गया। ली वेंजू के मुताबिक उनके पास अपने पति की गिरफ्तारी से जुड़ा सिर्फ 1 आधिकारिक नोटिस है और वो नहीं जानती कि उनके पति जिंदा भी हैं या मर गए। उन्होंने कोर्ट के बाहर अपने गुस्से का इजहार किया। सरकार बेशर्मी से कानून तोड़ रही है, इसलिए मैंने आज बाल मुंडवाकर विरोध जताया है। मैं यहाँ कई बार आई हूँ, मैं अपने पति के मामले में जानकारी चाहती हूँ और मैं कोर्ट से इसकी मांग करना जारी रखूंगी। ये थे ली वेंजू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन सरकार के सुरक्षा बलों का कहना है कि हुदेदा बंदरगाह पर संघर्ष विराम लागू होने के कुछ मिनटों बाद ही इसका उल्लंघन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने सरकार सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। हुदेदा बंदरगाह शहर हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। बीते हफ्ते संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुई वार्ता में हूती विद्रोहियों और यमन सरकार के बीच संघर्ष विराम लागू करने को लेकर सहमति बनी थी, जिसे आज ही लागू किया गया है। हुदेदा बंदरगाह यमन के आम नागरिकों के लिए बेहद अहम है। इस बंदरगाह के जरिए युद्ध पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2014 से जारी यमन युद्ध में अब तक करीब 10,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने संसद से कहा है कि वो अपनी ब्रेग्जिट डील पर जनवरी से 3rd हफ्ते से पहले वोटिंग नहीं कराएंगी। उनका कहना है कि पहले वो यूरोपीय संघ से कानूनी निश्चितता चाहती हैं। सदस्य इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर आयरलैंड सीमा के मसले को हल नहीं किया गया तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जुड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री मे ने दूसरा जनमत संग्रह कराने से इनकार किया है। उनका कहना है कि इससे ब्रिटेन के लोकतंत्र को चोट पहुंचेगी। मुख्य विपक्षी नेता जर्मी कार्बन ने आरोप लगाया कि मे वोटिंग में इसलिए देरी कर रही हैं ताकि ब्रिटेन के पास उनकी डील के सिवा कोई विकल्प ही न बचे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। छत्तीसगढ़ में कल शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करने की शुरुआत भी कर दी। शाम 6 बजे के आसपास शपथ लेने के बाद वे सीधे राजधानी रायपुर पहुंचे और वहां शपथ लेने वाले मंत्रियों और दूसरे अफसरों के साथ बैठक के बाद किसानों की कर्ज माफी की घोषणा भी कर दी। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
सोमवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, नारायण सामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फारूक अब्दुल्ला, शरद यादव समेत देश के कई जाने माने नेता रायपुर में मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ समारोह में पहुंचे हुए थे।
मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
इस आयोजन में कांग्रेस पार्टी और समर्थक दलों की एकजुटता के अपने निहितार्थ हैं, लेकिन भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखने के लिए जिस तरह हजारों लोग समारोह स्थल पर पहुंचे थे, उससे सभी नेता उत्साहित नजर आए। शपथ ग्रहण के 2 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल की बैठक की, कुछ अफसरों का तबादला किया, कुछ के काम में फेरबदल किए। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने अपने फैसलों की जानकारी दी।
3 महत्वपूर्ण फैसले आज पहले दिन ही हम लोगों ने किया है। झीरम घाटी में आप सबको मालूम है कि हमारे प्रथम पंक्ति के नेता सब शहीद हो गए। षड्यंत्रों का उजागर आज तक के नहीं हुआ है। अपराधियों को और षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के लिए एक SIT का गठन किया गया है।
कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान कर्ज माफी और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने का वादा किया था। इन फैसलों पर भी भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई।
धान के समर्थन मूल्य 1700 जो समर्थन मूल्य है उससे बढ़ाकर 2500 रुपये में खरीदने की बात कही थी, दोनों फैसले हम लोग लिए।
हालांकि इन फैसलों के कारण राजस्व पर दबाव बढ़ने की भी बात कही जा रही है। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार का कहना है कि सरकार इन कामों के लिए पैसा कहाँ से लाएगी, इसका कोई स्पष्ट जवाब सरकार के पास नहीं है।
इन्होंने जो वायदे किए हैं चुनावी घोषणा पत्र में, उससे एक अंदाज है, पहले साल में इस सरकार के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का बोझ आने वाला है। ये पैसा आएगा कहाँ से, खासकर तब जब केंद्र की सरकार बहुत मददगार रहेगी, ऐसी उम्मीद नहीं है। कैसे वायदे पूरे करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है।
शपथ लेने के 2 घंटे के भीतर अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी भूपेश बघेल की सरकार के सामने वादों और दावों की एक लंबी फहरिस्त है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था इन दावों के हक में कितनी खड़ी होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
वहीं मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ कर दिया। किसान नई सरकार के इस कदम से अभी तो खुश नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि यह कदम उनके लिए मददगार साबित होगा। वहीं अब विपक्ष की भूमिका में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी ने इसे किसानों के साथ धोखा बताया है। भोपाल से हमारे सहयोगी शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में सोमवार को कमलनाथ ने शपथ लेने के साथ ही किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले किसानों के 2 लाख रुपए के लोन को माफ करने की बात कही थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया था कि यह कदम सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर उठाया जाएगा। कमलनाथ ने शपथ के बाद सबसे पहले जिस फाइल पर हस्ताक्षर किए वह किसानों के कर्ज माफी की ही थी। उन्होंने बताया,
मैंने पद संभालने के बाद ऑफिस में आकर पहली फाइल जो साइन करी है, जो हमने अपने प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, ये मैंने पहली फाइल साइन करी। हमने वचन पत्र कहा है सभी बैंकों की, गवर्नमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, 80% तो गवर्नमेंट बैंक का है। और मैं तो गवर्नमेंट बैंक को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगों का कर्जा 40-50% माफ कर देते हैं, तब तो आपके पेट में दर्द नहीं होता, किसानों का कर्जा माफ करने में आपको दर्द होता है।
चुनाव के पहले किए गए कांग्रेस के इस वादे के पूरा होने की बात हर कोई कर रहा था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह इतने जल्दी हो जाएगा। किसान इसे लेकर अभी खुश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि इससे किसानों को जरूर मदद मिलेगी। राजगढ़ के किसान हफीज मेवाती कहते हैं,
और किसानों का कर्जा माफ सरकार ने जो वादा करा है तो वो तो कर्जा माफ तो करेगी ना। किसान तो बहुत सारी दिक्कतों में गुजर रहा है इस टाइम पे, तो हर तरह से पीड़ित थे किसान, जैसे कि यूरिया खाद नहीं मिल रहा है और यानी किसानों के प्याज के भाव कम कर दिए हैं, यानी किसान तो परेशान था इस सरकार से। हाँ, इससे बहुत राहत मिलेगी किसानों को।
वहीं दूसरे किसान भी खुश हैं कि उनका काम प्राथमिकता के आधार पर नई सरकार ने सबसे पहले किया। सीहोर के आशीष मेवाड़े ऐसे ही एक किसान हैं जो इस कदम की सराहना कर रहे हैं
कि जे जो कर्जा माफ कराएगा नई सरकार ने, जी बहुत ही अच्छा काम किया है। क्या है कि किसान की हालत आज बहुत खराब है और किसान की परवाह करने वाला कोई है नहीं गा इस सरकार में, और हमारी जिस तरह से चिंता करी, और आपको मालूम नहीं है सबसे ज्यादा छोटा किसान बहुत परेशान होता है इससे खेती से, और उसका कर्जा माफ कर दिया है तो इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है मध्य प्रदेश का किसान। अब हमें उम्मीद है कि हमारी किसानी बहुत अच्छी हो जाएगी और हमें इसका फायदा मिलेगा।
वहीं विपक्षी भाजपा ने इस कदम को किसानों के साथ धोखा बताया है। उनका कहना है कि नई सरकार ने यह राहत सिर्फ 31 मार्च 2018 तक दी है, जिससे ज्यादातर किसान इस राहत से बाहर होंगे और इसका फायदा बहुत कम लोगों को मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा,
जो किसानों के साथ में उन्होंने कर्जा माफी की घोषणा बतौर निर्णय लिया है, वह न केवल धोखा है बल्कि उन किसानों के साथ जो किसान खरीफ की फसल के लोन लेकर अभी अपना कृषि का कामकाज कर रहे हैं, उनका लोन माफ नहीं किया गया 31 मार्च तक। सामान्य तौर पर अधिकतर किसान 0% ब्याज लेने के लिए अपना लोन जमा करते हैं और उसके बाद में अपना कामकाज चलाने के लिए बाद में लोन केसीसी के तहत लेते हैं। इसलिए इन्होंने केवल जो कुछ मुट्ठी भर किसान हैं जो 31 मार्च तक लोन जमा नहीं कर पाए होंगे, केवल उनके कर्ज माफी की घोषणा की है।
सरकार का दावा है कि इस निर्णय से लगभग 34 लाख किसानों को फायदा होगा। वहीं फसल ऋण माफी पर संभावित व्यय 35 से 38 हजार करोड़ माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों के ऋण माफी की योजना को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई और फैसले किए हैं, जिनमें 4 टेक्सटाइल और गारमेंट पार्क स्थापित करना ताकि रोजगार पैदा किया जा सके, 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य करना और कन्या विवाह और निकाह योजना में दी जाने वाली राशि को 28,000 से बढ़ाकर 51,000 करना शामिल है। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
वहीं कल जयपुर, भोपाल और रायपुर में हुए कांग्रेस के नवनियुक्त मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन इन हाई वोल्टेज कार्यक्रमों से मायावती, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी गायब रहे। क्या इससे संभावित महागठबंधन से पहले का शक्ति प्रदर्शन कमजोर पड़ गया? सुनिए बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट।
इसी साल मई में जब कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो मंच पर विपक्षी नेताओं की साथ में हाथ उठाए तस्वीर चर्चा में रही। इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी थे और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती भी। सोमवार को जब जयपुर, भोपाल और रायपुर में कांग्रेस के नवनियुक्त मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली तो एक और तस्वीर चर्चा में आ गई। इस तस्वीर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेता बस में बैठे हुए दिखे, लेकिन इस बार न मायावती थी और न ही अखिलेश यादव। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बन रहे महागठबंधन के इन दो अहम किरदारों के शपथ ग्रहण समारोह में न पहुंचने से सवाल उठा है कि क्या विपक्षी एकता का शक्ति प्रदर्शन कुछ कमजोर रहा। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी को ऐसा नहीं लगता।
हमने सारे राजनीतिक दलों को न्योता दिया था कि आकर इसमें हिस्सा ले शपथ ग्रहण समारोह में। ममता बनर्जी नहीं आ पाई थी क्योंकि वो किसी और काम में व्यस्त थी। और रही बात अखिलेश जी की और मायावती जी की, उन्होंने दोनों ने अपना समर्थन हमारी पार्टी को देकर मध्य प्रदेश में अपना समर्थन जाहिर कर ही दिया है।
वहीं अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी के सवाल पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी कहते हैं,
देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की व्यस्तताएं हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने शुभकामनाएं दी हैं कमलनाथ जी को और अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, जो अभी नव निर्वाचित विधायक आए हैं राजेश कुमार जी, उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, पार्टी का रिप्रेजेंटेशन था वहां पर।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत के बाद राजनीतिक समीकरण बदले हैं और इसका असर अब गठबंधन पर भी होगा, प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं।
हम तो अभी भी कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम लोग अलायंस के साथ चलेंगे। हमने यूपीए में अलायंसेस के साथ सरकारें चलाई हैं और बहुत अच्छी सरकारें चलाई हैं और ये बहुमत वाली सरकार से ज्यादा अच्छी चलाई है, तो आने वाले समय में भी हम अपने गठबंधन की कोशिश करते रहेंगे।
इसी बीच राहुल गांधी को संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनाने की चर्चा भी शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि गठबंधन तो होगा लेकिन चेहरे पर नहीं बल्कि मुद्दों पर।
महागठबंधन बनना चाहिए लेकिन इसका क्या प्रारूप होगा, किस तरह की बनावट होगी, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल होगी, मैं समझता हूँ कि वक्त आने पर ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। अभी बहुत जल्दबाजी होगी। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि गठबंधन होना चाहिए लेकिन 2019 का जो चुनाव होगा वो किसी चेहरे पर नहीं होगा, वो मुद्दों पर चुनाव होगा।
समाजवादी पार्टी के इस बयान से साफ है कि वो राहुल गांधी के साथ तो खड़ा होना चाहती है लेकिन उनके पीछे नहीं। महागठबंधन में साथ खड़े होने की शर्तें क्या होंगी ये तय करने का काम अभी जारी है। दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
मुंबई के मरोल इलाके में कल एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक अस्पताल में आग लगने से कम 6 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईएसआईसी अस्पताल में ये आग शाम को लगभग 4 बजे लगी। आग की घटना के बाद कुछ लोगों ने अस्पताल से छलांग लगा दी जिसके कारण भी लोग घायल हुए हैं। इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर।
जब हम पहुंचे वहां पे, ये मुंबई का मरोल नाम का जो MIDC है यानी इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज अगल बगल में है, बड़े बड़े होटल्स हैं, इसी में ये जो कामगार यानी लेबर अस्पताल जिसे कहते हैं वो वहां पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे चलाती है, पूरा सरकार का है और जो इस इलाके के लेबर है, मजदूर है ज्यादातर, वो यहाँ पे आते हैं। बड़ी 4 मंजिला ये इमारत है। जब हमने देखा तो वो पूरी तरह सभी जगह पे फायर टेंडर्स थे, एम्बुलेंसेस थी, आवाज आ रही थी और जो भी अंदर पेशेंट्स थे उनको सब बाहर निकाला जा रहा था। धीरे धीरे करके इस पूरे अस्पताल में करीब 100 पेशेंट्स थे, उनके रिश्तेदार थे, कुछ देखने आए थे, डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, सब लोगों को वहां से निकाला गया और जो भी पेशेंट्स थे उनको नजदीक के जो अस्पताल है, अलग अलग अस्पतालों में उनको ले जाया गया। पूरा जल चुका था अस्पताल। इस अस्पताल की 2 बिल्डिंग है, एक बहुत पुरानी है, 70 के दशक से खड़ी हुई है और एक दूसरी नई वहां पे हो रही है, पूरे जल चुकी थी, उसकी बू आ रही थी, पानी सब जगह पे था। बताया ये जा रहा है कि करीब शाम के 4 बजे के आसपास ये आग जो है वो लग गई, पूरा धुआं वहां पे छा गया, स्मोक था और लोग पैनिक हो गए। कुछ वीडियोस भी हमने देखे कि लोग खिड़कियों से बाहर छलांग लगा रहे थे कि उन्हें जाना है। पेशेंट्स जो थे, जो अस्पताल में एडमिट थे, उनको बहुत दिक्कत आई कि बाहर कैसे जाए और ऐसा ही चलता रहा। जो MIDC है उनका अपना अलग एक फायर ब्रिगेड होता है, वो वहां पे आ गया, उसके बाद मुंबई का फायर ब्रिगेड वहां पे आ गया और सब लोगों ने उनको वहां से रेस्क्यू किया। अब तक की जो जानकारी है, सब लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है और 6 लोगों की मरने की पुष्टि जो है वो पुख्ता तौर पर की गई है। करीब 100 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं। घबराहट भी अभी भी है लोगों में और पता ये जा रहा है कि शायद ये आंकड़े जो है वो बढ़ सकते हैं। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा था। हमने जब पूछा फायर ऑफिसर से कि क्यों हुआ तो वो बता रहे थे कि जो नई बिल्डिंग हो रही है वहां पे कुछ फायर सेफ्टी की जो चीजें वहां पे होनी चाहिए थी और उसकी NOC के लिए वो वहां पे आए थे तो वो पूरी तरह नहीं थी, इसलिए उनको NOC भी नहीं दी गई थी। अब ढूंढना ये है कि ये जो नई बिल्डिंग है जिसको फायर सेफ्टी की NOC नहीं दी गई थी, वहां से आग शुरू हुई या फिर पुरानी बिल्डिंग में लगी और आखिर वजह क्या है।
मुंबई के अस्पताल में आग से 6 की मौत, जानकारी दे रहे थे मयूरेश कोन्नूर। कल शाम आंध्र प्रदेश के तट पर चक्रवाती तूफान पेथाई ने दस्तक दी। भारतीय मौसम विभाग ने तूफान के आने की सूचना पहले ही दे दी थी और प्रशासन ने इससे निपटने के लिए खास तैयारियां भी की थीं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या हालात हैं यही जानने के लिए हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने बात की हैदराबाद में BBC संवाददाता दीप्ति बत्तीनी से।
देखिए, जो ये जो पेथाई साइक्लोन है ये संडे को जो था वो काफी सीवियर साइक्लोन बन के था समुन्द्र के अंदर ही, पर मंडे को शाम को होते होते ये इसका साइक्लोन का प्रभाव थोड़ा कम होते हुए दिखाई दिया और मंडे के शाम को 3 बजे के आसपास ये यानम जो पुदुचेरी स्टेट का यूनियन टेरिटरी का एक प्लेस है और काकीनाडा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के बीच में इसका लैंडफॉल हुआ है और अभी जहां तक पता चल रहा है सोमवार के शाम तक जहां तक इंफॉर्मेशन दी गई है IMD ऑफिशियल्स की तरह से वो एक डीप डिप्रेशन बन के रहा है और इसका प्रभाव जो है दोनों गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट पे काफी इम्पैक्ट हुआ है और विशाखापट्टनम में भी इसका इम्पैक्ट काफी दिखा है। और इसी को लेकर, इसी साइक्लोन को लेकर यहाँ ईस्टर्न तेलंगाना और सदर्न छत्तीसगढ़ में भी काफी रेनफॉल हुई है, काफी मौसम भी यहाँ पे बहुत ठंडा हो गया है इस साइक्लोन के इम्पैक्ट को लेकर। सोमवार के रात के समय में जो देखा गया, अभी बारिश थोड़ा कम हुआ है पर उसी तरह से तेज हवा चल रही है। गोदावरी, विशाखापट्टनम और कृष्णा गुंटूर, ये रीजन का जो मेन लाइवलीहुड है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर है, उसका अभी जो लॉस है वो पता नहीं चल पा रहा है। बट जहां तक ऑफिशियल्स का प्रिपेयरनेस था इस साइक्लोन को लेकर, काफी प्रिपेयरनेस दिखा ऑन ग्राउंड, लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे भेजा गया था।
इस साइक्लोन को लेकर के सरकार ने पहले से हाई अलर्ट जारी किया था, अधिकारियों को सभी तरीके के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे, तो क्या आपको लगता है कि जो तैयारी थी वो काम आई, जान और माल का नुकसान कम हो सका?
बिल्कुल, जो तैयारी गवर्नमेंट की तरफ से आई थी वो बहुत काम में आया है, क्योंकि पिछली साइक्लोन जो हमने देखा था वो तितली साइक्लोन था, जिसका लैंडफॉल श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में था, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश रीजन में था, वहां पे काफी नुकसान हुआ था। भले ही ह्यूमन लॉस नहीं था पिछले साइक्लोन में, पर काफी एग्रीकल्चर का लॉस हुआ था पिछले साइक्लोन में। तो लगता है इस बार अधिकारियों ने उससे लेसन सीख लिया है और इस बार काफी प्रिपेयरनेस दिखा ऑन ग्राउंड। पर अभी देखना तो होगा कि अभी साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ है, अभी वो थोड़ा साइक्लोन थोड़ा वीकेंड हो रहा है, तो ऑन ग्राउंड एक्चुअल कितना नुकसान हुआ है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या इसमें ह्यूमन लॉस का भी नुकसान जो है अभी पता चलना बाकी है।
चक्रवाती तूफान पेथाई आंध्र के तट से टकराया, अधिक जानकारी दे रही थी दीप्ति बत्तीनी। अपने फेसबुक दोस्त से मिलने बिना दस्तावेजों के काबुल के रास्ते पाकिस्तान के कुवाहाट शहर पहुंचे 33 साल के मुंबई के हामिद निहाल अंसारी 3 साल पाकिस्तानी जेल में बिताने के बाद आज भारत लौट सकते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता जतिन देसाई हामिद के मामले से करीब से जुड़े रहे हैं, इस पर विस्तार से बात की हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने।
आज दोपहर के बाद ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान उसको इंडियन हाई कमीशन जो है, इंडियन हाई कमीशन के ऑफिशियल जो है वो भी बाघा बॉर्डर पहुंचेंगे, तो उनको वो हैंडओवर करेंगे, प्रोसीजर होगी। और इंडियन हाई कमीशन के ऑफिसर जो है उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से इंडिया में आने के लिए उसके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, अनलेस ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही कैन नॉट एंटर। तो इंडियन हाई कमीशन के ऑफिसर जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट देंगे, उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट के आधार पर वो इंडिया में आएंगे, और इंडिया में आने के बाद ऑब्वियसली इंडियन एमईए के ऑफिसर्स वहां होंगे, एमएचए के लोग होंगे, हमीद के पेरेंट्स वहां होंगे, मैं भी वहां रहूंगा, हमीद का बड़ा भाई जो डेंटल सर्जन है वो भी आ रहा है, तो इस तरह पूरे फैमिली के लिए, पूरे फैमिली के, हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि हमीद इज फाइनली रिटर्निंग होम टुडे।
पाकिस्तान की अदालत में उन्हें जासूसी का दोषी करार दिया गया और 3 साल की उन्हें सजा सुनाई गई और वो सजा पूरी करके भारत लौट रहे हैं। आप हामिद अंसारी के मामले से बहुत करीब से जुड़े रहे हैं, आपकी नजर में हामिद का गुनाह क्या था?
उसको अगर गुनाह कहे तो मैं उसको गुनाह नहीं मानता हूँ कि हमीद पाकिस्तान के कुवाहाट की एक लड़की का मोहब्बत में था और बहुत पढ़ा लिखा लड़का, एमबीए टॉपर, आईटी इंजीनियर, वो सब चीज जानता था, लेकिन हम कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, वो अपनी मोहब्बत के खातिर वो पाकिस्तान गया था। अगर इसको अगर गुनाह कहते हैं तो वो गुनाह है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि गुनाह के लिए उसके पीछे उसका मेन सिरिया, उसका इंटेंशन महत्व का होता है। इसका इंटेंशन तो बहुत ही क्लियर था, मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ उस लड़की को मैं मिलना चाहता हूँ, उससे निकाह करना चाहता हूँ।
तो क्या आपकी जानकारी में हामिद अंसारी उस लड़की से मिल पाए या नहीं, उनकी कोई बात आगे बढ़ पाई या नहीं, इस पूरी प्रेम कहानी के पीछे जो लड़की थी?
नहीं, उसको कभी नहीं मिल पाया, कभी नहीं मिल पाया।
तो क्या हकीकत में कोई लड़की थी भी या?
हकीकत में होगी ऐसा मैं मानता हूँ,
लेकिन आमिर कभी उस लड़की से मिल नहीं पाए और 3 साल उनको जेल में बिताने पड़े।
वेरी ट्रेजिक।
अच्छा जतिन देसाई साहब, आप भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की अदला बदली से लेकर मानवाधिकारों के मुद्दे से जुड़े रहे हैं, दोनों देशों के बीच जो हालिया संबंध हैं काफी तनावपूर्ण भी हैं और एक तरीके से दूरियां भी आ गई हैं, ऐसे में जिन परिवारों के लोग इधर से उधर की जेलों में कैद हैं उनके लिए कैसे हालात हैं?
हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि करतारपुर का हम लोगों ने देखा कॉरिडोर की जो बात हुई, वो एक अगले साल गुरु नानक देव की 550वीं जयंती है, तो उस ओकेशन को लेकर एक कॉरिडोर बन रहा है, वो एक अच्छा माहौल बना है। और हमीद को छोड़ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक अपने आप में बड़ी बात है, और हम ऐसे उम्मीद रखें कि और कोई हमीद ना हो।
ये थे मानवाधिकार कार्यकर्ता जतिन देसाई। अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास है। स्टूडियो में अखबारों के साथ मौजूद हैं गुरप्रीत सैनी। जी गुरप्रीत बताएं।
जी मेरे सामने अभी इंडियन एक्सप्रेस अखबार है जिसमें मुझे सबसे पहली खबर यही दिख रही है कि हामिद अंसारी स्वदेश लौट रहे हैं आज।
जी जी
6 साल पहले उन्हें वहाँ पे पकड़ा गया था और वो आज वापस लौट रहे हैं अपनी सजा पूरी करने के बाद।
जी 2012 में उनको जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया था, फिर उनको पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने 2015 में 3 साल की सजा सुनाई थी जो 15 तारीख को पूरी हो चुकी है।
और 1984 दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद, ये लगभग सभी अखबारों में ये खबर है। इंडियन एक्सप्रेस में निरप्रीत कौर की तस्वीर है जिसमें उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो इस मामले में याचिकाकर्ता थी। उनका एक बयान इसमें है कि जो माचिस का डब्बा था वो पुलिस वाले ने दिया था और सज्जन सिंह ने हमें सांप कहा था। वो उस वक्त 16 साल की थी और उनके पिता को उनकी आंखों के सामने ही केरोसिन डालकर जला दिया गया था।
जी ये बहुत बड़ी खबर थी सिख विरोधी दंगा मामले में कल एक सज्जन कुमार को सजा सुनाया जाना। इसके अलावा क्या और है गुरप्रीत?
जी रफाल पर संसद के अंदर बाहर संग्राम, ये खबर है, ये भी कई अखबारों में है। लोकसभा में रफाल पर बीजेपी और कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। दोनों पार्टियों ने रफाल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विशेषाधिकार नोटिस दिया। वहीं बीजेपी के 70 शहरों में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। और मुंबई के अस्पताल में जो आग लगी है उसकी खबर भी लगभग बहुत से अखबारों में दिख रही है। और रफाल की अभी मैंने बात की, रफाल पर ही सीएजी की रिपोर्ट, जो उसकी मसौदा रिपोर्ट है, वो रक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है और इस रिपोर्ट पर सीएजी ने सरकार की राय मांगी है।
गुरप्रीत मौसम बहुत सर्द हो चला है, आप सर्दी का तो देख ही रहे हैं, दिल्ली में काफ़ी सर्दी हो रही है। नवभारत टाइम्स की ये खबर है कि 6.2 डिग्री पर कांपी दिल्ली, रिकॉर्ड टूटा। राजधानी दिल्ली में कल का सबसे न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री तक गिर गया था। तो जिस तरीके से मौसम सर्द हो रहा है तो ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा नवभारत टाइम्स में ये खबर है कि तुरंत 3 तलाक बिल फिर से पेश। तो नया बिल जो है सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन ये राज्यसभा से कब पास होगा ये देखना होगा। अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत सैनी। और अब समय है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में मयंक अग्रवाल और हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। चोटिल युवा ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह बतौर ओपनर मयंक अग्रवाल लेंगे। वहीं 3 महीने पहले कमर की चोट की वजह से टीम से बाहर हुए हार्दिक पांड्या ने रणजी मैचों में अपनी फिटनेस साबित कर वापसी की है। लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले मयंक अग्रवाल ने अभी तक अपना टेस्ट डेब्यू नहीं किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला में उन्हें टीम में जरूर शामिल किया गया था लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पर्थ टेस्ट मैच का आज 5वां और आखिरी दिन है। कल 4थे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में 5 विकेट पर 112 रन बनाए। टेस्ट जीतने के लिए उसे अब भी 175 रन बनाने होंगे। और वहीं इंडियन प्रीमियर लीग 2019 से पहले खिलाड़ियों की नीलामी आज जयपुर में होने जा रही है। इस बार 346 खिलाड़ियों को आईपीएल नीलामी में बोली के लिए चुना गया है। इसमें 226 भारतीय खिलाड़ी हैं। आज टीमों के पास नीलामी में बोली लगाने के लिए कुल 145 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण के बाद वहां के मुख्यमंत्रियों ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की। अमरीकी सीनेट के लिए तैयार की गई 2 रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रूस ने 2016 में हुए अमरीकी चुनावों पर असर डालने के लिए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। 3 साल पहले गिरफ्तार किए गए चीन के एक वकील की पत्नी ने बीजिंग कोर्ट के सामने सर मुंडवाकर विरोध जताया। ली वनजू के पति समेत 200 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 2015 में चीन सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। यमन सरकार के सुरक्षा बलों का कहना है कि उदेदा बंदरगाह पर संघर्ष विराम लागू होने के कुछ मिनटों बाद ही इसका उल्लंघन किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने संसद से कहा है कि वो अपनी ब्रेक्जिट डील पर जनवरी के तीसरे हफ्ते से पहले वोटिंग नहीं कराएंगी। उनका कहना है कि पहले वो यूरोपीय संघ से कानूनी निश्चितता चाहती हैं। गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियों को नए साल से फ्रांस में टैक्स देना होगा। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।